नमस्कार भारत, तारीख 19 जुलाई, दिन गुरुवार, मैं हूँ मानसी दाश। थाईलैंड में गुफा से बचाए गए बच्चों ने की मीडिया से बात। स्वामी अग्निवेश पर हमले के संबंध में भाजपा मंत्री सीपी सिंह का एक और विवादित बयान।
कौन सा वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है जो मैं उसका पक्ष लूंगा, अग्निवेश का क्यों लूंगा पक्ष?
जानेंगे हिमालय में मिलने वाली दुर्लभ औषधि यारसा गुम्बा के बारे में।
बरसात हो गया भी हम लोग यारसा गुम्बा खोजते है, सब पीसते है कपटे, एम्बुलेंस होता है कभी कभी, बहुत मुश्किल है, बहुत डर होता है इधर।
साथ ही दुनिया जहान में होगी बात पाकिस्तान के आम चुनावों की, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिय सांगवान से। पिछले हफ्ते थाईलैंड के गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी लड़कों को निकाला गया था और आज वे सब अस्पताल से छुट्टी के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने दो हफ्ते तक पानी से भरी गुफा में रहने का अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए बच निकलना एक चमत्कार का पल था। गूगल कंपनी पर यूरोपीय संघ नियामकों ने $5 अरब का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय कंपटीशन कमिश्नर मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा कि गूगल ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त में बेचा ताकि इन स्मार्टफोन्स में गूगल सर्च इंजन को प्रमोट किया जा सके। उन्होंने कहा कि गूगल गैर कानूनी गतिविधियां करता रहा है ताकि बाजार में अपने इंटरनेट सर्च का दबदबा बना सके, और अगर गूगल 90 दिन के अंदर अपना रवैया नहीं बदलता है तो उस पर और जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय मूल के गूगल और सीईओ सुंदर पिचई ने एक वीडियो ऑनलाइन जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि कंपनी के एंड्रॉयड ने विकल्प दिए हैं, कम नहीं किए हैं।
Earlier today, the European Commission issued a competition decision against Android.
आज यूरोपीय कमीशन ने एंड्रॉयड के खिलाफ फैसला दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 2007 में गूगल ने एंड्रॉयड सिस्टम को मुफ्त में दिया। इस वजह से फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए बेहतर बाजार बना। हमें लगता है कि हमारा पक्ष मजबूत है क्योंकि एंड्रॉयड ने यूरोप और विश्व बाजार को फायदा पहुंचाया है, और इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के शब्द। एड्स और एचआईवी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि 50 देशों में एचआईवी संक्रमण के नए मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही बच्चों में इसके फैलने से रोका नहीं जा रहा। यूएन एड्स के निदेशक माइकल सिदीबे ने बताया कि मां से बच्चों में संक्रमण को रोकने के प्रोग्राम ने 20 देशों में तो बेहतर नतीजे दिखाए हैं, लेकिन ये नतीजे लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, पिछले साल 8% मामलों में ही संक्रमण को मां से बच्चों में फैलने से रोका जा सका था। हमारे सामने 1,80,000 नए मामले थे, 1,10,000 बच्चों की मौत हुई। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में तो पिछले 20 सालों में एचआईवी के मामले दुगने हो गए हैं। इस लड़ाई में सेक्स वर्कर्स और समलैंगिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यूएन एड्स के निदेशक माइकल सिदीबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के 2016 के अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप को लेकर दिए हालिया बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप अब तक सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्हें कमजोर राष्ट्रपति बताया गया तो उन्होंने बताया कि रूस मामले में उन्होंने सब राष्ट्रपतियों से बेहतर काम किया है और सख्ती दिखाई है, जैसे कि प्रतिबंध लगाना, अपने राजदूतों को रूस से हटाना और जो सीरिया में हुआ वो सब। ये सब बातें पुतिन भी जानते हैं और खुश नहीं हैं। ट्रंप ने हेलसिंस्की में अमरीकी एजेंसियों के दावे के विपरीत कहा था कि उन्हें कोई कारण नजर नहीं आता कि रूस ने अमरीकी चुनावों में दखल दिया होगा। हालांकि मंगलवार को वे अपने बयान से पलट गए। अमरीका में रूसी महिला मारिया बुटिना को रूस की एजेंट के तौर पर काम करने की वजह से आरोपी बनाया गया है, जिस पर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को कमजोर दिखाने के लिए किसी ने ये साजिश की है। वहीं अमरीका की अदालत ने मारिया बुटिना को ट्रायल तक जेल में ही रखने के आदेश दिए हैं ताकि वो देश छोड़कर ना जा सकें। तुर्की का सरकारी न्यूज एजेंसियों का कहना है कि सरकार इमरजेंसी हटा रही है। यह इमरजेंसी 2 साल पहले तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद लगाई गई थी। राष्ट्रपति एर्दोगन के आदेश पर हजारों लोगों को गिरफ्तार कर अब तक बिना ट्रायल के ही रखा गया है। हजारों लोगों की नौकरी छीन ली गई थी। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सिर्फ इमरजेंसी हटा देने से नुकसान की भरपाई नहीं होगी। ब्रिटेन की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी एस्टन मार्टिन ने कहा है कि वे निजी एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जिसे अभी आसमान की स्पोर्ट्स कार नाम दिया गया है। ये उड़ने वाली कार दो साल में तैयार हो जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। खबरों की शुरुआत करते हैं एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर से। थाईलैंड की टैमलुंग गुफा से बचाए गए 12 बच्चे और उनके कोच को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बाढ़ के कारण 2 सप्ताह से गुफा में फंसे इन बच्चों को बीते सप्ताह सुरक्षित बाहर निकाला गया था। स्वस्थ होने के बाद ये बच्चे पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपनी आप बीती दुनिया को बताई। सुनिए सर्वप्रिया सांगवान की ये रिपोर्ट।
चौदह साल का अदुल मीडिया को बता रहा था कि 2 हफ्ते तक पानी से भरी गुफा में फंसे रहना कैसा था। पिछले हफ्ते ही 12 लड़कों को थाईलैंड की टैमलुंग गुफा से सुरक्षित निकाला गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ये बच्चे और इनके कोच मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी आपबीती सुनाई। जूनियर फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के खिलाड़ी ये बच्चे अपनी गेम टी शर्ट में ही न्यूज कॉन्फ्रेंस में आए थे। इनके स्वागत के लिए फुटबॉल की पिच की तरह स्टेज डिजाइन किया गया था और एक बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा था वाइल्ड बोअर्स की घर वापसी। ये सभी बच्चे और इनके कोच 23 जून की शाम फुटबॉल का अभ्यास करने के बाद थाईलैंड की चौथी सबसे लंबी गुफा देखने गए थे। थाईलैंड में 22 और 23 जून को हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी गुफा में घुस गया और सभी गुफा के अंदर फंस गए। इन बच्चों और कोच ने गुफा के अंदर ऐसी जगह तलाश ली थी जिससे वे बाढ़ के पानी की चपेट में आने से बच गए। जब 2 जुलाई को गोताखोर इन्हें ढूंढ रहे थे तब हमें कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दी तो हमने एक दूसरे को चुप रहने के लिए कहा ताकि सुन सकें। हमें पक्का नहीं पता था तो हमने सुना और पता चला कि सच है। हम हैरान थे। अदुल के शब्द। जब एक बच्चे से पूछा गया कि वे कैसे सिर्फ पानी के सहारे रहे तो उसने बताया कि पानी साफ था लेकिन सिर्फ पानी ही था, खाना नहीं था। 11 साल के चेनिन ने बताया वो खाने के बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि इससे भूख ज्यादा महसूस होती, लेकिन इन बच्चों को ढूंढना आसान नहीं रहा। नेवी सील लेफ्टिनेंट भेक लोहारून ने बताया गुफा के अंदर जाते हुए बहुत मुश्किल हुई। दरअसल हम सोच रहे थे कि गुफा के बाहर से एक सुरंग बना लेंगे, इन बच्चों को निकालने का यही सबसे ज्यादा सुरक्षित उपाय था। इन बच्चों को ढूंढ निकालने के बाद भी इन्हें गुफा से निकालने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया। अदुल ने जब बचावकर्ताओं को देखा तो बस हेलो ही कह पाया। ये बस चमत्कार था। मैं सदमे में था जब मुझसे पूछा कि कैसे हो तो मुझे सोचना पड़ा और मैंने कहा कि ठीक हूँ, पर मैं सदमे में था। अदुल के शब्द। ये बच्चे कुछ वक्त के लिए बौद्ध साधु बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलैंड के रिवाज के मुताबिक जो पुरुष किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गुजरता है उसे ऐसा करना पड़ता है।
रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। अब रुक करते हैं भारत का। सोमवार को झारखंड के पाकुड़ में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमला हुआ था। कथित तौर पर हमला बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया था। इसके बाद बीते कल यानी बुधवार को प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह का एक विवादित बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अग्निवेश धोखेबाज हैं और लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने खुद पर हमला करवाया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैं 40 साल से जानता हूँ स्वामी अग्निवेश को। भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं था ही नहीं, उसने तो प्रायोजित करके अपने ऊपर लात जूता घूसा करवाया। ये स्वामी अग्निवेश ने प्रायोजित करवाया स्वयं। स्वामी अग्निवेश पुराना फ्रॉड है।
इसी मसले पर बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने सीपी सिंह से संपर्क किया और उनसे पूछा कि स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले को स्वतः प्रायोजित बताकर क्या वो उनके साथ हुई हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं।
आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कौन सा आधार है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया?
नहीं, हम तो ये कह नहीं रहे कि भाजपा ने किया, लेकिन हमला जिसने भी
है आप लोग।
नहीं नहीं, हम तो नहीं कह रहे सर, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रहा हूँ।
आपने पाकुड़ के सूत्रों के अनुसार पता चला?
पाकुड़ के सूत्रों के हिसाब से आपको पता चला?
हाँ जी।
आप वो सूत्र साझा करेंगे सर?
नहीं, क्यों, प्रेस को क्यों बताएंगे?
नहीं, मैं तो विनम्रता से पूछ ही रहा हूँ कि अगर आप बताना चाहें।
मैं तो विनम्रता से बताना चाह रहा हूँ कि प्रेस को मैं अपने सूत्र क्यों बताऊं?
जी, आपकी सरकार है झारखंड में, देशद्रोह का आरोप आप उन पर लगा रहे हैं। देशद्रोह के मामले में आप उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे कहीं पर? देशद्रोह का केस दर्ज
प्रशासन अपना काम करेगी।
सर, आपने कहा कि हमला उन्होंने खुद पर प्रायोजित कराया। आपके प्रदेश में कानून हाथ में लेने वाली एक घटना हुई और जिस पर हमला हुआ उसका पक्ष लेने के बजाय अब ऐसा लग रहा है कि हमला करने वाली भीड़ का पक्ष ले रहे हैं।
क्यों लेंगे, कौन सा वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है जो मैं उसका पक्ष लूंगा, अग्निवेश का क्यों लूंगा पक्ष?
जो आप कह रहे हैं क्या झारखंड सरकार की आधिकारिक राय भी वही है कि उन्होंने हमला खुद पे प्रायोजित करवाया?
मैं इसके बारे में नहीं कह सकता आधिकारिक राय या नहीं है, मैंने कहा सीपी सिंह ने कहा है, अब इसको जो आप समझे।
लोकप्रियता हासिल करने के लिए खुद पे हमला प्रायोजित कराया, इसके कोई सबूत आपके पास नहीं है?
बिल्कुल, इस आदमी का इतिहास यही है और इसीलिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश दत्तू जी ने इसको फटकार भी लगाई थी। 2011 में गुजरात में अमरनाथ यात्रा पर इसने टिप्पणी की थी। इसी प्रकार से ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आतंकवादियों के कैंप में जाके लाल सलाम करता है, मध्यस्थता की बात करता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे उड़ीसा में। एक अधिकारी जिलाधिकारी का अपहरण हुआ था, उस मामले में मध्यस्थता करता है, इसका मतलब इसके मिलीभगत होती है और यह मध्यस्थता करने का ढोंग करता है। पहले करवाता है इस तरह का काम और उसके बाद मध्यस्थता करने का ढोंग करता
जी। सीपी सिंह जी, आप अपनी सरकार को, अपने प्रशासन को जांच में सहयोग देने के लिए क्या वो सबूत देंगे उनको जो आप कह रहे हैं कि खुद पर हमला खुद कराया?
अब वो तो जब सरकार हमसे पूछेगी तो मैं दूंगा, मैं इस व्यक्ति को महत्व इतना क्यों दूं?
लेकिन आपकी ओर से सर निंदा का स्वर नहीं आया, पहले ये आया।
अरे भैया, फिर निंदा का स्वर क्या आएगा, मैंने कल ही निंदा कर चुका।
मतलब आप भीड़ की ओर से की गई हिंसा की निंदा करते हैं?
बिल्कुल, कोई भी लोकतंत्र में असहिष्णुता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और मैं इसकी निंदा करता हूँ।
चलिए,
लेकिन ये भी सत्य है कि ये स्वयंभू अग्निवेश देश के लिए घातक है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोई मारपीट की है। हाँ, इतना जानकारी मुझे जरूर है कि काले झंडे उन्होंने दिखाए हैं।
आपको बता दें कि 79 साल के स्वामी अग्निवेश आर्य समाजी हैं और बंधुआ मजदूरों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वालों में से एक हैं। वो नोबेल जैसा माने जाने वाले राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित हैं। उन्होंने एक राजनीतिक दल आर्य समाज, माफ कीजिएगा, आर्य सभा की शुरुआत भी की थी। आर्य समाजी होने के कारण वे मूर्ति पूजा और धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले सुनते हैं क्या कुछ छपा है आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में। अखबारों के साथ सर्वप्रिया सांगवान स्टूडियो में आ चुकी हैं। बताइए सर्वप्रिया, क्या है आज की सुर्खियां?
मानसी, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर अविश्वास प्रस्ताव की खबर है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है कि पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है। ये प्रस्ताव लोकसभा में 50 से अधिक सांसदों के समर्थन मिलने पर मंजूर होता है और अब 20 जुलाई यानी शुक्रवार को इस पर चर्चा और वोटिंग होगी। एनडीए के पास 313 सांसद है और अविश्वास प्रस्ताव के लिए टीडीपी, कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। अब 20 जुलाई को देखना होगा कि किसके पास कितनी ताकत है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में जो दो इमारतें गिर गई थी और अब तक उसमें मलबे से 8 शव निकाले जा चुके हैं, बिल्डर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए बताए जाते हैं
जी। द हिंदू की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो सबरीमाला टेम्पल, जिसके बारे में हम बहुत सुनते थे,
केरल का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है
जी हाँ, जहाँ पर महिलाओं को जो 10 से 50 साल तक की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनका जाना अलाउड नहीं है, मतलब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जो रोक उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर आप जो 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर जाने से रोकते हैं क्योंकि उस उम्र तक उनको अपवित्र माना जाता है तो क्या ये अनटचेबिलिटी नहीं है, और जब इसको तो अनटचेबिलिटी को तो कानून हटा चुका है तो इसके ऊपर अब कोई मंदिर, और मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी की है कि कोई भी मंदिर प्राइवेट नहीं होता, अगर कोई मंदिर खुल जाता है तो वो सबके लिए खुल जाता है। इसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प सी एक खबर है हरियाणा सरकार को लेकर, जहां पिछले 8 साल से हरियाणा सरकार गलती से अपने विधायकों का टैक्स भर रही थी।
टैक्स
जी हाँ, और उन्हें इनकम टैक्स, और उन्हें अब तक इसका पता ही नहीं था। सरकार को तकरीबन 3 करोड़ की चपत लगी है इसकी वजह से और अब पुराने और नए विधायकों से रिकवरी कर रहे हैं अधिकारी जिन विधायकों को इस गलती से फायदा हुआ। ये सारा मामला एक आरटीआई की वजह से सामने आया है।
धन्यवाद सर्वप्रिया सांगवान। पाकिस्तान में अब से कुछ दिन बाद यानी 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं। वहां की राजनीति के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को चुनाव से ऐन पहले भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया है, पर मुख्य टक्कर उनकी पार्टी नवाज लीग और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी के बीच होनी तय है। कई देशों में चुनाव ठीक वक्त से करवा दिए जाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ चुनाव करवाना ही लोकतंत्र की गारंटी है? सुनिए दुनिया जहान में, प्रस्तुत कर रहे हैं संदीप सोनी।
दुनिया जहान,
तेरी सूरत शहीदों की तस्वीर है, नाम तेरा बिलावल, निशान तीर है।
25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए पाकिस्तान में चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो संभाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जिम्मेदारी क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के कंधों पर है।
मेरे पाकिस्तानियों, एक अजीम ख्वाब का नाम है पाकिस्तान, अपने आप को उठाओ, ये है टाइम अपनी तकदीर बदलने का, बड़ी सोच रखने का, नया पाकिस्तान बनाने का।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया और 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो उनकी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं।
निकलने दो,
पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग को खत्म किया, सड़कें बनती हैं।
पाकिस्तान का मतदाता भी खासा उत्साहित है और जमकर सवाल पूछ रहा है।
अभी इलेक्शन आ गई है, या आसिफ जरदारी या किसी नवाज शरीफ या इमरान खान को जरूरत होगी, अभी आ रहे हैं, अभी क्यों आते हैं?
हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तू हमारा लीडर है, मगर गरीबों का कौन सा इंसाफ किया है?
हम ये पूछते हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तानी अवाम के लिए कौन से वसाइल पैदा किए?
जैसा जरदारी, जैसे नवाज शरीफ,
हमें यहाँ जो है ना बहुत ही गंदगी में हम रह रहे हैं। आप जो है आते हो, वोट लेके चले जाते हो, वजीर आजम बन जाते हो, और जो करते हो कुछ भी नहीं हो।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मिलकर बनती है। नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, इनमें से 272 सीटों पर चुनाव होता है, बाकी बची 70 सीटें। 70 में से 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। अब बात चुनावी मुद्दों की। इस्लामाबाद से BBC संवाददाता हारून रशीद बता रहे हैं ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और कौन से हैं वो मुद्दे जो नदारद हैं।
जो कुछ पिछले एक वर्ष में मुस्लिम लीग नून और खासकर नवाज शरीफ के साथ हुआ है, जो करप्शन की कहानियां और जब से पैनामा लीक्स आया था, तो उसकी वजह से सारा इलेक्शन जो है इस पर अभी भी करप्शन जो है वो सबसे बढ़कर हावी है। और इमरान खान लोगों को यकीन दिला रहे थे कि मैं चोर नहीं हूं और आपका पैसा नहीं चुराऊंगा दूसरी जमातों की तरह। मेन तो वो उसी पे लड़ा जा रहा है, कोई ज्यादा बात नहीं हो रही मैनिफेस्टोस पे, लेकिन मेरे ख्याल में जो 2-3 अहम मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं हो रही। वो ये है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है या जो मिलिट्री है या जो पार्लियामेंट है, इनके दरमियान कैसे तय होगा कि ये काम फौज का है और किसी का नहीं, और ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप का है, फौज इसमें हाथ नहीं मारेगी। दूसरी है कि मीडिया की आज़ादी, मेरे ख्याल में ये बड़ा क्रूशल एलिमेंट है, तो उस पर भी कोई बात नहीं हो रही।
पाकिस्तान के इस चुनाव में असल मुकाबला नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बीच माना जा रहा है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान जिस पिच पर राजनीति का बल्ला घुमा रहे हैं, उसी मैदान से नवाज शरीफ आउट होकर फिलहाल जेल जा पहुंचे हैं। क्या भ्रष्टाचार का मौजूदा मामला और जेल की सलाखें नवाज शरीफ के सियासी सूरज को डुबा सकती हैं? इस सवाल पर लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के प्रोफेसर रहे डॉक्टर मेहदी हसन कहते हैं,
देखिए उनका पॉलिटिकल कैरियर तो फिलहाल खत्म ही नजर आता है, लेकिन उनकी पार्टी जो है पंजाब में, जो 60% पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है, उसमें उनकी पोजीशन काफी बेहतर है। उन्होंने ये फैसला वापसी का उस वक्त किया, उन्होंने और उनकी बेटी ने, जब उनको सजा हुई भी थी और उनको पता था कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, तो उनका ये फैसला भी उनके हक में गया और अवाम में उनकी साख बेहतर हुई कि वो सजा भुगतने के लिए वापस आए लंदन से पाकिस्तान को।
हामिद मीर पाकिस्तान में TV पत्रकारिता के एक जाने माने चेहरे हैं। उनका मानना है कि नवाज शरीफ के लिए संसद के दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति का कोई रास्ता बंद नहीं है।
नवाज शरीफ का सियासी कैरियर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, अलबत्ता पार्लियामेंट में उनकी वापसी का रास्ता जो है वो बंद है, लेकिन सियासत में तो उनका किरदार अभी है। वो जेल में है, लेकिन जेल में भी बैठ के उनका एक किरदार मौजूद है, उनकी जो पार्टी है वो उनका नाम ले रही है। मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ के नाम पे तो वोट नहीं लेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो कोई वोट बैंक नहीं है।
पाकिस्तान ने अस्तित्व में आने के बाद लंबे समय तक सैन्य शासन देखा है। हामिद मीर से जब मैंने ये पूछा कि इस बार के चुनाव में ऐसा क्या है जो नया है, तो उन्होंने कहा,
देखिए मुझे कोई इसमें खास फर्क नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की मैनिपुलेशन हम 90s में देखते थे इलेक्शन से पहले, वैसी ही मैनिपुलेशन अभी भी नजर आ रही है। जिस तरह का वायलेंस 2013 में हमने इलेक्शन से पहले देखा, 2008 में इलेक्शन से पहले देखा, वैसा ही वायलेंस भी नजर आ रहा है। पाबंदियां मीडिया पे पहले लगती रही है, वैसी ही आज भी लग रही है। इसी तरह के इलेक्शन पाकिस्तान में होते हैं। 2002 में दो बड़े लीडर पाकिस्तान में नहीं थे, ना बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में थी, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे। उसके बावजूद इलेक्शन में दोनों की पार्टियों ने हिस्सा लिया और दोनों को काफी सीटें भी मिल गई। फिर 2008 में बेनजीर भुट्टो जो है वो इस दुनिया में नहीं रही और सिर्फ नवाज शरीफ मौजूद थे, और 2013 में भी नवाज शरीफ मौजूद थे और आसिफ जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो की प्रॉक्सी थे। ये इलेक्शन जो है 2018 का, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2002 जैसा इलेक्शन है, क्योंकि 2002 में नवाज शरीफ भी नहीं थे और बेनजीर भुट्टो भी नहीं थे, और अब 2018 में भी नवाज शरीफ भी नहीं है और बेनजीर भुट्टो भी नहीं है, लेकिन दोनों की पार्टियां मौजूद हैं। ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। अभी जमहूरियत पाकिस्तान में इतनी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इलेक्शन 25 जुलाई को हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन डिले करवाने के लिए बहुत कोशिश की गई।
क्या 25 जुलाई को होने वाला आम चुनाव पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर पाएगा? इस सवाल पर प्रोफेसर मेहदी हसन कहते हैं,
देखिए पिछले 70 साल में जमहूरी कल्चर तो पाकिस्तान में परवान नहीं चढ़ सका। 70 साल में से 35 साल तो फौज की बराह रास्त हुकूमत रही, उसके अलावा जो हालात रहे उनमें भी आर्म फोर्सेस की से बहुत ज्यादा रही। आजकल जो हुकूमत है जिसको केयर टेकर हुकूमत कहा जाता है, वो कमजोर हुकूमत है, और पॉलिसीज जो हैं इस वक्त वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हाथ में है, और दिखाई ये देता है कि हुकूमत केयर टेकर की नहीं है बल्कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हुकूमत है। जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान में जड़ें नहीं पकड़ सकी, और जो भी हुकूमत बरसरदार होती है उसका रवैया जो है वो जमहूरी कल्चर के मुताबिक नहीं होता।
प्रोफेसर मेहदी हसन ने जिस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जिक्र किया, पाकिस्तान की राजनीति में चुनाव में उसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। क्या है ये, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता हारून रशीद।
जनरल मुशर्रफ ने इक्तदार संभाला था 1999 में नवाज शरीफ को डिसीट करके, तो उस वक्त उन्होंने भी यही इनके खिलाफ आरोप था कि ये बड़े करप्ट हैं तो हम मुल्क में करप्शन का खात्मा करेंगे। तो उन्होंने ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो बनाया था, लेकिन वो सेलेक्टिव ज्यादा नजर आती है। ये जो टाइमिंग है, जो पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ फैसले आ रहे थे, जैसे नवाज शरीफ साहब थे, फिर जरदारी साहब का भी पिछले हफ्ते एक खाता खुल गया और वो सारा कुछ नैब की तरफ से एक हाइप क्रिएट हुआ था, तो उस पे लोग जरूर सवाल उठा रहे थे कि आखिर इस वक्त ये अकाउंटेबिलिटी जो है, जबकि इलेक्शन कैंपेन अब आखिरी मरहलों में है और ये पॉलिटिशियंस को मजीद बदनाम करने और उनकी जो स्टैंडिंग है उसको मुतासिर करने की एक कोशिश है, तो ये फेयर नहीं है, और इमरान खान की पार्टी पर कोई हाथ नहीं डाल रहे, जो बाकी नून और पीपल्स पार्टी है उनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जरदारी साहब का जो केस है वो अब इलेक्शन के बाद तक सुप्रीम कोर्ट ने डिले कर दिया है कि हम उनके बाद सुनेंगे। इमरान खान का अगर वो हेलीकॉप्टर का एक केस है कि उसका मिसयूज उन्होंने किया था केपी हुकूमत का, वो आज तक केस की हेयरिंग कोई समझ नहीं आ रही कि कब होगी, तो वो नैब पे जरा सा ये एक है कि इंप्रेशन इस तरह का बना है कि वो वन साइडेड खेल रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही सबको।
पाकिस्तान की राजनीति को समझने वाले ज्यादातर जानकार ये कहते हैं कि इमरान खान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना आसानी से पूरा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में यदि पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने की नौबत आई तो जनता जनार्दन को लोकतंत्र और सरकार का एक नया चेहरा देखने का मौका मिल सकता है।
दुनिया जहान कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपके खतों का हमें इंतजार रहेगा। और अब चलते हैं हिमालय की पहाड़ियों पर एक दुर्लभ औषधि के बारे में जानने के लिए। माना जाता है कि ये दुर्लभ औषधि सोने से भी अधिक महंगी है। इसका नाम है यारसा गुम्बा और ये बनता है एक कीड़े और फफूंद के संगम से। कुलदीप मिश्र की आवाज़ में नेहा शर्मा और आमिर पीरजादा की रिपोर्ट सुनिए।
ये यारसा गुम्बा है, ये सोने से भी ज्यादा महंगा है।
ये थे कर्मा लामा जो यारसा गुम्बा का व्यापार करते हैं। यारसा गुम्बा कैटरपिलर की फफूंद यानी फंगस है। ये तब बनता है जब मिट्टी में मौजूद फफूंद कैटरपिलर पर हमला करके उसे मार देता है। मरे हुए कैटरपिलर जैसा ही दिखने वाला यारसा गुम्बा दुनिया का सबसे महंगा मेडिकल फफूंद है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इससे कैंसर, अस्थमा और नपुंसकता का इलाज संभव है। एक किलो यारसा गुम्बा $1,00,000 यानी करीब 65 लाख रुपए तक का बिकता है। ये कैटरपिलर भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत के 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कर्मा लामा बीते 5 सालों से यारसा गुम्बा का व्यापार कर रहे हैं।
ये अन्नपूर्णा 2 बेस कैंप है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। दूर दराज से गोरखा, धादिंग, लामजुंग जिले के लोग यहाँ यारसा गुम्बा की तलाश में आते हैं।
मई और जून के महीने में हजारों नेपाली लोग यारसा गुम्बा की तलाश में पहाड़ों का रुख करते हैं, जिससे यहाँ के गांव खाली हो जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंचाई पर काम करना खतरे से खाली नहीं है। यारसा गुम्बा की तलाश का काम करने वाली सीता गुरुंग कहती हैं,
बहुत ठंडा होता है, बरसात हो के भी हम लोग यारसा गुम्बा खोजते है, सब भीजता है, कपड़े एवलांस होता है, कभी कभी बहुत मुश्किल है, बहुत डर होता है। इधर बहुत जोर से आया तो इधर भी आ जाएगा, हम लोग को उड़ा के लगता है।
कर्मा जैसे व्यापारी हर दूसरे दिन इस फफूंद की तलाश में चढ़ाई करते हैं। एक यारसा गुम्बा की कीमत उन्हें मिलती है करीब 280 से 300 रुपए, जिसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे कि चीन, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कोरिया, म्यांमार और थाईलैंड तक निर्यात किया जाता है। वहां इसकी कीमत करीब 7000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच जाती है। जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और बेहद मांग की वजह से इसकी पैदावार पर असर पड़ा है। खुद सीता गुरुंग भी कहती हैं कि अब वो बात नहीं रही।
पहले तो बहुत मिलते, कॉपी तो 100 भी मिलते एक दिन में, पर आज कॉपी 2 मिलते, 20 भी मिलते, कॉपी खाली भी जाता है।
एक अनुमान के मुताबिक इन किसानों की सालाना आय का 56% हिस्सा यारसा गुम्बा बेचने से आता है। इसका हर टुकड़ा उनके लिए खुशी और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आता है।
ये यारसा गुम्बा मिल के ना हमको वो अच्छे अच्छे कपड़े लेने के मिलता है, काठमांडू जाने के लिए घूमने के पैसे मिलते हैं, वो घर के पैसे नहीं मांगता है ना। ये अच्छा है।
हिमालय की इन सुंदर पहाड़ियों पर दिन ढल चुका है, लेकिन यारसा गुम्बा की तलाश कल सुबह फिर शुरू होगी।
नेहा शर्मा और आमिर पीरजादा की रिपोर्ट सुना रहे थे कुलदीप मिश्र। कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले एक बार सुनते हैं विश्व समाचार।
पिछले हफ्ते थाईलैंड के गुफा में फंसे जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी लड़कों को निकाला गया था और आज वे सब अस्पताल से छुट्टी के बाद मीडिया के सामने आए। उन्होंने 2 हफ्ते तक पानी से भरी गुफा में रहने का अपना अनुभव साझा किया। गूगल कंपनी पर यूरोपीय संघ नियामकों ने $5 अरब का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय कंपटीशन कमिश्नर मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा है कि गूगल ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त में बेचा ताकि इन स्मार्टफोन्स में गूगल सर्च इंजन को प्रमोट किया जा सके। एड्स और एचआईवी से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि 50 देशों में एचआईवी संक्रमण के नए मरीज बढ़ रहे हैं और साथ ही बच्चों में इसको फैलने से रोका नहीं जा रहा। रूस के 2016 के अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप को लेकर दिए हालिया बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप अब तक सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्हें कमजोर राष्ट्रपति बताया गया तो उन्होंने बताया कि रूस मामले में उन्होंने सब राष्ट्रपतियों से बेहतर काम किया है और सख्ती दिखाई है। अमरीका में रूसी महिला मारिया बुटिना को रूस के एजेंट के तौर पर काम करने की वजह से आरोपी बनाया गया है, जिस पर रूस ने नाराजगी जाहिर की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया अजीत सारथी ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम के कार्यक्रम दिन भर में। तब तक आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।